2002 की मुरली है। डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी निगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी निगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बात ही होगी, होती है ना। तो कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हैं, उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। जो फॉरेनर्स लगा सकते हैं वो सीधा लंबा क्या हाथ उठा, मुबारक हो। अच्छा, जो समझते हैं कि एक सेकंड में नहीं तो एक घंटा तो लगेगा ही, सेकंड तो बहुत थोड़ा है ना, एक घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वह हाथ उठाओ। देखो, फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं, भारतवासी भी जो समझते हैं एक घंटे में नहीं आधे दिन में लग सकती है, वह हाथ उठाओ। एक सेकंड, एक घंटा और 12 घंटा। कोई कोई ने उठाया है, है तो सही, बाप दादा को पता है, बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है। लेकिन समझो, यदि आधा दिन लगे, एक घंटा लगे और आपको किसका निमंत्रण आ जाए, ऊपर वाले का, और किसका निमंत्रण आ जाए, काल का, और किसका निमंत्रण आ जाए, धर्मराज का, और किसका निमंत्रण आ जाए, सेवा का निमंत्रण। अच्छा, उसमें तो कर सकते हैं सेवा, व्यर्थ संकल्प सहित। सेवा में क्या चाहिए, और बिंदी। लेकिन समझो, आधा घंटा लगे, एक घंटा लगे और आपको निमंत्रण आ जाए, तो किसका निमंत्रण, घर चलने का, और विनाश कभी निमंत्रण देकर आता है क्या। लेकिन समझो, आधा दिन लगे, आधा घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए, तो ऐसा शायद कहीं और नहीं कहा है बाबा ने, एडवांस पार्टी का निमंत्रण। तो क्या रिजल्ट होगी, अंत मते सो गति क्या होगी, समझदार तो होना। इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी स्वरूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल क्या करो, फिक्स करो, और क्या करो, सेट करो, और क्या करो, राहुल भाई मन का टाइम टेबल क्या करो, सेट कर दो, फिक्स कर दो, और क्या कर दो, बना दो, और क्या करो, चेक करो, और क्या करो, चेक, फिक्स, नोट। बाबा कह रहे अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो, काम भी ऊंचा तो, लक्ष्य भी ऊंचा तो, पुरुषार्थ भी ऊंचा तो, तो आपका तो एक एक सेकंड क्या बहुत वैल्यूबल है, और तो आपका एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, क्यों नहीं बिंदी लगती, उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसके लिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। अव्यक्त मुरली है ये 28 मार्च की 2002 की। क्या सुना? बिंदी लगाना किसको? व्यर्थ को, निगेटिव को, बीती को, और कितने टाइम में? एक सेकंड, एक घंटा और 12 घंटा, तीन ऑप्शंस हैं, तीन विकल्प दिए हैं, और उसमें क्या हो सकता है? कौन किसका निमंत्रण आ सकता है? एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ सकता है। तो क्या रिजल्ट होगी? अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए क्या करो, मनसा को बिजी रखो, मनसा का टाइम टेबल बनाओ, माइंड को क्या करो, खाली नहीं रखो, सदा बिजी, टाइम टेबल फिक्स, ऊंचे से ऊंचे, क्या भगवान के बच्चे हो तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, ऊंचे से ऊंचे, भगवान के बच्चे हो तो आपका तो, इधर से चालू करते हैं अरविंद भाई, आप तो नहीं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो, ऊंचे से ऊंचे तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, आवाज बुलंद। वो दीवार के पीछे कौन है? हाँ बोलिए। हर एक सेकंड टाइम फिक्स है, हर एक सेकंड का टाइम टेबल। तो डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में भी कोई व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स तो समझते हैं कैसी भी बीती बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती है, तो कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हो उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हो। जो फॉरेनर्स लगा सकते है वह सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो, अच्छा है। जो समझते है एक सेकंड में नहीं, एक घंटा तो लगेगा ही, सेकंड तो बहुत छोटा है ना, थोड़ा है ना, एक घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वह हाथ उठाओ। देखो फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे, भारतवासी भी जो समझते एक घंटे में नहीं आधे दिन में लग सकती है, वह हाथ उठाओ। कोई कोई ने उठाया है तो सही, बाप दादा को पता है, बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है। लेकिन समझो आधा दिन लगे, एक घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंत मते सुगति क्या होगी? समझदार तो हो ना, इसलिए अपनी मनसा को क्या करो, बिजी रखेंगे, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे। अपना तो बिंदी लगाने की बनाएंगे तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदु रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, सेट करो, बनाओ, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो तुम्हारा एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती, उसका कारण क्या है? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं है करके स्टॉप नहीं कर सकते। 28/3/2002 की मुरली है, अतीत का और भविष्य का अस्तित्व जो है एक रीति से है ही नहीं, अस्तित्व जो है केवल वर्तमान का है। भविष्य को और पास्ट को सूडो टाइम कहा जाता है, झूठा समय। चाहे पास्ट कितना भी अच्छा हो, परंतु पास्ट की उन बातों को लाना और उसमें रमन करना अर्थात वर्तमान से दूर हटना है। जीवन जो है वो वर्तमान है, ना कि अतीत। अतीत में जो भी हुआ है, दर्दनाक घटनाएं, दुखद घटनाएं, चोट पहुंचाने वाली घटनाएं, जो भी बातें हुई है, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं। चाहे बहुत अच्छी चीजें हुई है, उनमें रमन करना, वो भी तो वर्तमान से दूर जाना है। गलतियां, भूले, जो कुछ हुआ है, एक है पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना और उससे बाहर निकल जाना, पर दूसरा है उसी में रहना, पश्चाताप ही करते रहना, वो भी व्यर्थ गवाना है वर्तमान को। वर्तमान फिर नहीं आने वाला। वर्तमान में जो अमृत की धारा बह रही है यहाँ पर, इसको छोड़कर अतीत में प्रवेश करना, अतीत में जीना, ये संगम युग पर बुद्धिमानी नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ न कुछ गलतियां करता है, क्योंकि उसकी जो स्मृति है, ज्ञान की अवेयरनेस जो है, वो हमेशा ही एकरस नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि ज्ञान वो भूला है, निरंतर तो नहीं भूलता कोई, परंतु जब जब बीच बीच में भूलेगा तब तब गलतियां होगी, और उन उन गलतियों का हर व्यक्ति जब तक पश्चाताप और प्रायश्चित करके उससे बाहर नहीं निकलता, उसी में ही रमन करते रहता है। जापान में एक सामुराई समाज है, सामुराई अर्थात मिलिट्री, वो युद्ध करने वाला, उसमें एक बहुत सुंदर बात, एक कहानी लिखी गई है कि जिसमें एक योद्धा होता है, बहुत शक्तिशाली योद्धा, तो वो एक जगह पर उसकी पोस्टिंग रहती है जहां पर वो युद्ध की ट्रेनिंग दूसरों को सिखाता है। तो उसका जो बड़ा ऑफिसर होता है, वो उसके घर जाता है और उसका जो अफसर होता है उसकी पत्नी के साथ इसका प्यार हो जाता है, और एक दिन ये बात सबको पता चल जाती है, तो अफसर उसे ललकारता है, तो ये व्यक्ति उस अफसर को मार देता है और उसकी पत्नी के साथ भाग जाता है। भाग जाने के बाद वो जो स्त्री थी, उसे पता चलता है ये इसका स्वभाव तो बहुत ही लोभी है, बहुत ही लालची है, ये परेशान हो जाता है उससे। पहले तो उसे पता नहीं था, पहले तो केवल दैहिक आकर्षण था, परंतु अब स्वभाव का पता चलता है और इतना त्रस्त हो जाता है उससे, इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके लालच का कोई ठिकाना ही नहीं, कोई हद ही नहीं, इतनी वो लालची स्त्री रहती है। तो आखिर एक दिन परेशान हो जाता है और सोचता है मैंने ये क्या पाप कर दिया, इस स्त्री के लिए मैंने किसी को मार दिया, और एक दिन उस स्त्री को छोड़कर चला जाता है। सोचता है अभी जीवन भर पश्चाताप करूंगा, ये मेरे से क्या गलती हो गई। संन्यास धारण करता है, अकेला ही कोई गुरु से मिलता नहीं, भिक्षा मांगते हुए जीवन व्यतीत करता है, और इस तरह जब जीवन यापन करते रहता है, तब उसके मन में आता है क्या करूं मैं, जो मेरे हाथों से जो पाप हुआ है उससे मुझे मुक्ति मिले। जीवन में जो कुछ अतीत था उसके, वही घूमते रहता है, बस घूमते ही रहता है उसके मन में। तो एक बार पहुंचता है एक चट्टान में, उसका नाम भी है झिंकाई, उस फकीर, उस व्यक्ति का नाम था, सत्य घटना है। और एक जगह पहुंचता है, शायद एडो करके एक जगह है जापान में, वहां पर देखता है एक बहुत बड़ी चट्टान है और वो बहुत खतरनाक है, यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल है वहां से जाना। तो वो सोचता है ये जो बहुत बड़ी पहाड़ी है, इसके बीच से एक सुरंग खोदूंगा, जैसे भारत में दशरथ मांझी ने खोदी थी वो, उसी तरह उधर भी जापान में इससे भी बड़ी वो बहुत बड़ी पहाड़ियों के बीच से सुरंग खोदता है। 30 साल तक ये कार्य करता है, क्योंकि उसके मन में गहरा आघात था, एक गहरा पश्चाताप था, और उसे कैसे भी करके इस पाप से मुक्त होना था कि मैंने किसी एक स्त्री के लिए किसी का खून कर दिया और आखिर में उस स्त्री को भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो 30 साल तक वो सुरंग खोजते रहता, दिन भर भिक्षा मांगना, क्योंकि वो एक सन्यासी जैसा ही हो जाता है, और रात में छन्नी और हथौड़ा लेकर सुरंग खोदना अपने पापों का शमन करने के लिए। और जब 2 ही साल बचे रहते हैं तो जिसका उसने खून किया रहता है, जिसकी उसकी जो पत्नी रहती थी उनका जो बेटा था उसके अफसर का, वो आता है बदला लेने के लिए। और अब जो बहुत बड़ा समुराय बन चुका होता है, एक बहुत बड़ा योद्धा, वो कहता है तुमने मेरे पिता को मारा था, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। तो वो सन्यासी कहो या फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे 2 साल और चाहिए, 2 साल के बाद तो मुझे मार देना, क्योंकि मुझे ये सुरंग पूरी करनी है। 28 साल हो गए हैं और थोड़े समय बाकी है, अगर ये सुरंग पूरी हो जाए तो हजारों यात्री यहाँ से जा सकेंगे, और कितने यात्री जो मरते हैं ऊपर चट्टान से गुजरते समय नहीं मरेंगे। तो वो रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है बेटा, और वो बैठा रहता है वहीं पर, करेगा क्या, क्योंकि मारना है उसे, उसके पिता का हत्यारा है वो। तो फिर धीरे धीरे वो उसको मदद करने लगता है, बैठे बैठे करेगा क्या दिन भर। तो कुछ महीने तो बैठते रहता है, फिर कुछ महीनों के बाद वो उसको थोड़ी मदद करने लगता है, और फिर मदद करते करते देखता है कि ये जो व्यक्ति है जो सुरंग खोद रहा है, कैसी इसकी दृढ़ता है, कैसी इसकी डेडिकेशन है, कैसा इसका चरित्र है, कैसी इसकी दिनचर्या है, एक एक चीज को देखता है। सुरंग पूरी होती है, यात्रियों के लिए खुल जाती है, और कई सारे लोग अब वहां से जाने लगते हैं। तो फिर 30 साल के बाद वो व्यक्ति उस बेटे से कहता है कि अब तुम मुझे मार सकता है। वो कहते हैं हाउ कैन आई किल माय मास्टर, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं। उस 2 साल में ही उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है। तो वह जो व्यक्ति था जिसके जीवन में भूले हुई गलती हुई, उसने उसको उस अतीत को कैसे पलट दिया और अपने जीवन को और अपने चरित्र को इस तरह बदल दिया कि वो दूसरे व्यक्तियों के लिए, विरोधियों के लिए भी गुरु बन गया। तो गलतियां तो हैं, अतीत तो दर्दनाक है, खतरनाक है उसकी यादें, परंतु केवल उसका पश्चाताप करते रहना है या केवल उसी में रमन करते रहना या बुद्धिमानी नहीं है। जो हुआ उससे सीखना और आगे बढ़ जाना, बस। लेसन क्या था, चैप्टर क्या था मेरे लिए, कौन सा सबक उसमें था, वो सीखा और आगे बढ़ गए। ज्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं करना है। बाबा कह रहे 1 सेकंड में बिंदी लगाओ, 1 घंटे में बिंदी लगाओ, 12 घंटे में बिंदी लगाओ, कितना समय लगता है बाप जानते हैं, बाप को पता है। ये करने के लिए अगर बिंदी लगानी नहीं है तो क्या करो, बिजी कर दो स्वयं को, फिर बिंदी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिनचर्या ही फिक्स कर दो, सेट कर दो, ऐसी कर दो कि व्यर्थ के लिए कहीं समय नहीं है, व्यर्थ के लिए कहीं टाइम ही नहीं है। एक मोमेंट, एवरी मोमेंट इज अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, जागरण की अवस्था है प्रतिपल जीवन का। क्योंकि व्यक्ति जब जागरण की अवस्था से नीचे आता है तब गलतियां करता है। एक एक पल, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, सेकंड और संकल्प, बहुत सारी मुरलियां चली है इस पर, कहां वेस्ट जा रहा है, कहां निगेटिव आ रहा है। अगर हम एक नजर दौड़ाएं संपूर्ण ब्राह्मण समाज में या संसार की आत्माओं में, और यदि हमें कोई कहे कि लिखो कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आपने एक भी निगेटिव संकल्प नहीं किया, तो ये मुश्किल काम है। हरेक के प्रति यदि हम यहाँ से ही चालू करें, यहाँ बैठे बैठे ही जो आंखों के सामने दिख रहे, हरेक के प्रति कभी ना कभी एक निगेटिव संकल्प तो किया ही है। किसी ने मदद नहीं की तो निगेटिव संकल्प, किसी ने कुछ कह दिया तो निगेटिव संकल्प। निगेटिव से ऐसी प्रीत है जन जन्म की, छूटती नहीं। प्रेम नहीं है, ऐसे हो जाता है, जो ऐसे हो जाता है अर्थात प्रेम ही है वो। तो करत करत अभ्यास से पक्का हो गया है वो, बार 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 चीज को की है। इसके लिए बिंदी लगाने की विधि अर्थात क्या करना होगा, कुछ तो नया करना होगा। जैसे यह व्यक्ति था, उसने एक क्रिएटिव वर्क ढूंढ लिया अपने आप के लिए, बोझ था नया वर्क, रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, ऐसे कार्य को ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें माइंड बिजी हो जाए। यहाँ तो बाबा मन के टाइम टेबल की बात कर रहे, हम फुल दिनचर्या की भी बात कर रहे हैं, दोनों ही टाइम टेबल। एक तो मन की दिनचर्या तो बहुत सूक्ष्म है, जिस पर कई बार यहाँ पर चर्चा हो चुकी है, मन की दिनचर्या, एक एक कर्म के साथ एक एक समान जोड़ना, ये तो बहुत सूक्ष्म है। उससे भी पहले आता है स्थूल दिनचर्या। कई लोगों की दिनचर्या में बीच का समय इतना सारा फ्री है, 10 मिनट कहीं फ्री है, 15 मिनट कहीं फ्री है, वो फ्री टाइम वो व्यर्थ बातों में लगा रहे, भोजन की चर्चा, मौसम की चर्चा, कारोबार की चर्चा, किसने क्या कहा उसकी चर्चा, कितना टाइम वेस्ट जा रहा है, ये सारा अगर जमा कर लिया जाए, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10, 15-15 मिनट, तो कितना समय हमारे पास है। फिर ये शब्द नहीं आएगा कि समय नहीं है, समय बहुत है, चुराना है उसे। समय को क्या करना, चोरी करना है समय की, कहीं पर भी समय व्यर्थ न जाए। कहां कहां से मिलता है, टुकड़े टुकड़े लेना है उसके, कहीं से 1 सेकंड, कहीं से 1 मिनट, कहीं से आधा मिनट, कहीं से 10 मिनट, कहीं से 15 मिनट, और किस में लगाना है, योग में। किस में लगाना है, ज्ञान के चिंतन में, मनन में, अध्ययन में, ज्ञान के विस्तार में। तो व्यर्थ कैसे आएगा, व्यर्थ कैसे लिखा जाएगा इस हाथों से, व्यर्थ बोलना और दूसरा है व्यर्थ लिखना। लिखेंगे कहां पर, कहां लिखते हैं श्याम भाई, व्यर्थ नहीं, दिमाग में नहीं, स्थूल में, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल लिखते हैं ना, उस पर बड़े बड़े मैसेजेस, हैप्पी गुड मॉर्निंग, वो तो चलो रिटर्न बने हुए रहते हैं, टाइपिंग, जितना बड़ा मैसेज समझ लेना उसमें उतना ज्यादा व्यर्थ है। सीधा नियम है, जितना बड़ा उतना व्यर्थ। सत्य की एक चिंगारी काफी है, सत्य की एक किरण काफी अंधकार को नष्ट करने के लिए, विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कोई लोग फोन करते कहते मुझे बहुत लंबी बात करनी है, शुरुआत में ही चालू यहां से, अभी क्या बात बहुत लंबी करनी है फोन काटना नहीं लिखना व्यर्थ लिखना, जितना हमने लिखा है आज तक फोन पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, उसकी अगर किताब बनाई जाए तो क्या कितनी बड़ी किताब होगी वो। एक है व्यर्थ बोलना, दूसरा है व्यर्थ लिखना। लिखना है तो ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है, चिंतन के अतिरिक्त कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा जो अति आवश्यक दिनचर्या की बातें है वो, बाकी पर्सनल मैसेजेस ये सब व्यर्थ की कैटेगरी में आता है, सब व्यर्थ में आता है। किसी को कुछ पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। नहीं होता। एक व्यक्ति ने, एक विचारक ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैंने उन सभी शब्दों के लिए पश्चाताप किया है जो मैंने बोल दिए, उन शब्दों के लिए कभी पश्चाताप नहीं किए वो जो मन में आए पर मैंने बोले नहीं। मन में जो संकल्प आते हैं वो क्षणिक होते हैं, तुरंत उसको SMS का रूप देने की आवश्यकता नहीं है, उनको अवतारित नहीं करो धरती पर, वो तुरंत उसको रूप दिया, साकार मूर्त रूप दे दिया, तो वो परमानेंट हो जाते हैं। आए चाहे कितने भी डिस्टरबेंस करने वाले संकल्प हो, साकार मुरलियों में आता है, कर्म में ना आए, मन में आ रहे हैं आने दो, थोड़े देर के बाद चले जाएंगे। तीव्र वासना, तीव्र क्रोध, तीव्र आवेग, तीव्र कुछ करने की इच्छा, तीव्र किसी से बात करने की इच्छा, अभी के अभी बात करके अभी के अभी बतानी है बात, जरूरी नहीं है, अर्जेंट कुछ भी नहीं है संसार में, अभी के अभी बताए, अभी के अभी किसी की गलती पता चल गई, अभी के अभी किसी को सुनाई जाए, जब तक सुनाते नहीं बेचैनी रहती है, नई बात पता चल गई ये यहां ये हो रहा है, किसको सुनाऊं? ये जो आवेग है, ये सारे जो आवेग है, ये व्यर्थ को जन्म देते हैं, निगेटिव को जन्म देते हैं। दूसरा है तुरंत उत्तर देना चीजों का बिना सोचे, इसके लिए व्यर्थ को बिंदी लगाना मुश्किल होता है, तो मन को बिजी रखना है, मन का टाइम टेबल बनाना, एक तो स्थूल टाइम टेबल पहले, कि कहीं पर भी टाइम वेस्ट ना हो उसमें। एक इंग्लिश ग्रामेरियन जो व्याकरण का अध्ययन करता है, उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैं देखता हूं लोग पान की टपरी में, चाय की टपरी में, रास्ते पे कितना समय खड़े रहकर व्यर्थ बातें करते रहते, अगर उन्होंने ये सारा समय अंग्रेजी के व्याकरण में अगर लगाया होता, स्टडी में इंग्लिश ग्रामर के, वो व्याकरण, वो तो ग्रामेरियन है, वो ये लिख रहा है व्याकरण विद, तो वो शायद भाषा को सीख चुके होते अगर ये समय व्यर्थ नहीं गवाया होता, ये सारा 10-10 मिनट 15-15 मिनट यहां वहां की बातें करने में। इसके लिए दिनचर्या सबसे पहले फिक्स करनी है कि उस दिनचर्या में कहीं पर भी 10-15 मिनट वेस्ट ना हो रहे हो, उसको क्रिएटिव वर्क से फिल कर देना है, भर देना है, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्क, क्रिएटिव वर्क, जिससे कुछ रचनात्मक हो, कुछ निर्माण हो। यहाँ जो भी पैराग्राफ पढ़ा जाता है, क्या सभी पढ़ के आते हैं? उसको पहले से ही पढ़ के आना है। ये किताब सभी के पास है, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो है ही। हाँ, चिमन भाई ने सबको दी थी किताब। ये नहीं कि जब हमारा टर्न होगा केवल हम तब पढ़ेंगे, हर टर्न हमारा टर्न है, ऐसा ही समझना है। पहले से पढ़ के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, केवल सुनेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। और पहले से पढ़ के आना अर्थात दिनचर्या में टाइम निकालना पड़ेगा, ज्ञान का थोड़ा भी चिंतन मनन अध्ययन करने के लिए दिनचर्या से बदलनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। दिनचर्या में सेट करना, दिनचर्या में टाइम निकालना अर्थात जो अभी व्यर्थ कर रहे उसका त्याग करना होगा, तो ही इसका अध्ययन किया जा सकता है, नहीं तो कहां से होगा अध्ययन। त्याग, जो टाइम सोने में जा रहा है एक्स्ट्रा सोना, वो इसमें लगाना है, जो टाइम भोजन की तैयारी और भोजन खाना एक्स्ट्रा, वो इसमें लगाना, जो टाइम घूमना फिरना बातें करना इधर उधर भटकना उसमें जा रहा है, वो ज्ञान में लगाना। कहां वेस्ट जा रहा है टाइम, उसका डायग्नोसिस चाहिए, उसका एनालिसिस करना है। यहां यहां टाइम वेस्ट जा रहा है, भविष्य में ही घूम रहे, वर्तमान में है ही नहीं, भविष्य में क्या होगा कैसे होगा, बस उसी का चिंतन चल रहा है, भविष्य की ही चिंता है, ना तो भविष्य, सूडो टाइम है दोनों भी, और पास्ट नाउ, द टाइम इज नाउ। यहां क्या करना है, यहां की दिनचर्या को सेट करना है बस। जिन्होंने ये आर्ट सीख ली, ये कला सीखी, उन्हीं का जीवन धन्य है। तो आज क्या करेंगे, एक तो ये स्थूल टाइम टेबल और सूक्ष्म टाइम टेबल, उसकी चर्चा तो कई बार की है, हर कर्म के साथ में एक समान जोड़ देना, नहाते समय कौन सा समान, खाते समय कौन सा समान, चलते समय कौन सा समान, घूमते समय कौन सा समान, कार्य में जाते समय कौन सा समान, आते समय कौन सा समान, बीच बीच में समान, ये समान से स्वयं को भर के रखना है। वो नए नए समान लेना है, एक ही समान नहीं, नए समान। उस दिन मोहिनी बहन जी ने क्लास कराई थी ज्ञान सरोवर में, अभी जो अव्यक्त मुरली चली उसके ऊपर, उन्होंने बहुत सुंदर बात उसमें कही है। कहा है कि जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ वापस अमेरिका, एक नई प्रैक्टिस लेके जाती हूँ, न्यू प्रैक्टिस न्यू एनर्जी। बाबा आते हैं, अभी सुनाने का तो कुछ इतना रहा नहीं है, रहा है, पर बाबा का प्रेजेंस, उस प्रेजेंस की स्मृतियों को मैं ले जाती हूँ। तो न्यू प्रैक्टिस, एक न्यू ड्रिल, न्यू ड्रिल जनरेट्स न्यू एनर्जी। नया कोई अभ्यास नई ऊर्जा को जन्म देगा। तो क्या हम नया अभ्यास कर रहे हैं कि वही अभ्यास कर रहे हैं? मैं आत्मा हूं, अभी परम धाम, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर और वापस इधर। नए अभ्यास को खोजना है, न्यू इन्वेंशन करनी है, नई स्पिरिचुअल ड्रिल्स लानी है। और जब तक वो नहीं आएगी तब तक नई ऊर्जा का जन्म नहीं होगा। हर दिन नया हो, हर युग नया हो, हर ज्ञान सुनना नया हो, हर ज्ञान के ऊपर चिंतन नया हो। अगर ये आज जो बात कही, ये जो पैराग्राफ पढ़ा, अगर ये फिर से पढ़ना है तो उसमें वो कोई भी बात ना हो जो आज चर्चा हुई, उसकी चर्चा एकदम दूसरी हो। एक ही पैराग्राफ अगर 10 दिन रोज पढ़ना है तो 10 दिन 10 प्रकार की चर्चा हो। एक ही मुरली पर अगर 10 क्लास करानी है तो 10 की 10 क्लास एकदम भिन्न हो। तो हर एक का चिंतन नया होना है, नवीनता। जब तक नवीनता नहीं है, जीवन मृत है, मुर्दा है। तो नव चिंतन, नव अध्ययन, नव शब्द भी नए हो, नियोलॉजिज्म, सब कुछ नया हो, नव भावना, नव क्या युवा। ओम शांति।